ओम शांति। एक दर्जी होते हैं टेलर, कभी बीमार पड़ा, बीमारी बहुत बड़ी थी और कोई दवा काम ना कर रही थी। दर्जी की हालत ऐसी थी कि अब गया तब गया। रात उस दर्जी ने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में उसने देखा कि वो मर चुका है और उसको ले जाया जा रहा है और उसकी एक कब्र बनाई गई है और उस कब्र में उसको डाला गया है। यह उसने स्वप्न देखा और उसने देखा कि जैसे ही उसे कब्र में डाला गया, वहां पर चारों ओर झंडियां ही झंडियां लटकी हुई थी कपड़ों की। तो उसे आश्चर्य हुआ, यह झंडियां क्या है? और कपड़े थे और दर्जी था तो स्वाभाविक है उसकी उत्सुकता जागी, ये कपड़े कौन से हैं, टुकड़े जो लगे हुए हैं। तो बाजू में ही एक फरिश्ता खड़ा होता है, तो दर्जी उस फरिश्ते से पूछता है, ये जो झंडियां है कपड़ों की, ये सब क्या है? तो वो फरिश्ता उस दर्जी से कहता है कि अब तक के जीवन काल में तुमने जितने कपड़े सिलाए और सिलाते समय जो कपड़े चोरी किए, सिलाते समय हर कपड़े से जो जो टुकड़े चोरी किए वो सारे टुकड़े यहां झंडियों के जैसे बनाकर लगाए हुए हैं, अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा। तो एकदम से घबरा जाता है वो, उसे सारा दिखाई देता है अपने वो हाथ, कीमती कपड़ा आया, कैंची चलाई और थोड़ा कपड़ा अंदर। तो पसीना आ जाता है और उसे वो मंजर वो दिखाई देता है सब कुछ, कि वो खुदा के सामने खड़ा है और कप रहा है, पसीना पसीना हो रहा है और उससे हिसाब पूछा जा रहा है एक एक कपड़े के टुकड़े का जो उसने अपने संपूर्ण जीवन काल में चुराए थे। और अचानक उसकी नींद खुलती है, घबराया सा वो दर्जी, पसीना पसीना, और संकल्प करता है आज से कोई भी कपड़ा नहीं चुराऊंगा। दुकान पर जाता है, उसके दुकान पर उसके दो चेले होते हैं, दो शागिर्द, जिनको वो सिखाते रहता है सिलाई कैसे की जाए। तो उन दो शागिर्दों को वो कहता है, आज के बाद जब भी तुम मुझे देखोगे कपड़े चुराते हुए या काटते हुए, तो तुरंत कहना झंझंडी 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 और झंझंडी, ऐसे कहना, ताकि मैं समझ जाऊंगा और चुराऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया है क्या होने वाला है। तो कई दिनों तक ऐसे चलता है, जैसे ही कीमती कपड़ा आता है और उसका दिल होता है कि इसको थोड़ा सा काट के रख लू, तो शिष्य देख लेते हैं और वहां से चिल्लाते हैं झंझंडी और झंझंडी, तो तुरंत उसकी कैंची रुक जाती है, क्योंकि फिर सामने वही धर्मराज उसके जो धर्म में है वो उसको दिखाई देने लगता है। परंतु एक बार ऐसा होता है कि राजा का बहुत कीमती वाला कपड़ा आ जाता है, बहुत ही कीमती कपड़ा, तो आदत पुरानी थी कौन सी, कपड़े चुराने की, पता था क्या कर रहा हूं। तो वो थोड़ा सा पीछे मुड़ जाता है, शिष्य दोनों आगे रहते हैं और बिना उनको दिखाए कपड़ा काटना चालू करता है, एक शिष्य देख लेता है और जोर से चिल्लाता है झंझंडी और झंझंडी, परंतु वो थोड़ा और आगे सरक जाता है, अपने आप को छुपा लेता है जैसे उसने सुना ही नहीं। फिर से दूसरा शिष्य चिल्लाता है झंझंडी और झंझंडी, वो कहते चुप करो क्योंकि ये रंग का जो कपड़ा है वो वहां पर था ही नहीं, ये रंग का कपड़ा जो झंडे मैंने देखे थे वो पूछते कहां पर, वो कहते तुम लोग नहीं समझोगे इसे चुप बैठो, ये रंग का कपड़ा उधर था ही नहीं, और अगर था भी तो एक कपड़े से एक झंडी से क्या फर्क पड़ता है। नियम था उसका, परंतु नियम जो था वो इतना गहरा नहीं गया था अभी, इसलिए पुरानी आदत अभी उभर उभर के बाहर आती थी। कीमती कपड़ा आया कि फिर से कैंची चल जाती थी। तो जो भी नियम बनाए जाते हैं, जब तक अवचेतन मन, जब तक वो गहरे तल पर मन के नहीं उतर जाते, कभी भी टूटने की संभावना रहती है, और स्वप्न में जो बनाए हुए नियम है वो कभी भी सत्य नहीं हो पाते। तो आज की मुरली में बाबा ने एक विशेष कैटेगरी, एक विशेष श्रेणी के ब्राह्मण आत्माओं को याद किया है। वैसे तो याद तो बहुत सारी आत्माओं को किया है, बहुत सारी श्रेणियां सुनाई है, नंबर वन, नंबर टू क्षत्रिय देवता, फुल पास, पास विथ ऑनर और पास, चढ़ने वाले उतरने वाले, कच्चा फल खाने वाले और प्रत्यक्ष फल खाने वाले, और मेहनत का फल खाने वाले। ऐसे बहुत सारी आत्माओं को बाबा ने आज याद किया है, उसमें से एक विशेष कैटेगरी की आत्माओं को भी याद किया है। वो कौन से हैं? नेमिनाथ, नेमिनाथ और अनन्य, ये भी दो कैटेगरी है। एक है नेमिनाथ, एक है अनन्य। नेमिनाथ अर्थात जैन धर्म में 22वां तीर्थंकर जो है वो नेमिनाथ है, परंतु बाबा जिस अर्थों में नेमिनाथ कहते हैं वो तीर्थंकर नहीं है, बाबा किसी और अर्थों में कहते हैं। वो तीर्थंकर तो दिखाया है श्री कृष्ण का चचेरा भाई, जिसने श्री कृष्ण को गीता का ज्ञान दिया था और फिर गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, इसलिए जैन धर्म में गीता का महत्व इसलिए है क्योंकि नेमिनाथ ने बताया था सारी गीता। 23वां तीर्थंकर जो है उसके 84,000 वर्ष पहले नेमिनाथ था, ऐसा वर्णन आता है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो बाबा पर नेमिनाथ किस अर्थों में कहते हैं? नेमिनाथ अर्थात जो नियमों पर चलते हैं, परंतु नियम इतने फिर भी गहरे नहीं उतरे हैं। एक जो रेगुलर सब कुछ करते हैं परंतु उन्नति का अनुभव नहीं है, लक्ष्य का अनुभव नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं ऐसा अनुभव नहीं है, प्राप्ति का अनुभव नहीं है। नियम प्रमाण, अमृत वेला उठना, मुरली सुनना, भोजन बनाना खाना याद में, ट्रैफिक कंट्रोल भी कर रहे हैं, नुमा शाम का योग भी हो रहा है, सेवाएं भी कर रहे हैं, परंतु सब कुछ कैसा हो रहा है? नियम प्रमाण हो रहा है, केवल गहरा अनुभव नहीं है, कोई नवीनता नहीं है, कोई रचनात्मकता नहीं है। जो उत्तर 10 साल पहले का था वही उत्तर अब भी है, ना बढ़ रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं। ये एक विशेष कैटेगरी है आत्माओं की, चेक करने की बात है कहीं हम इस कैटेगरी में तो नहीं है। बरसात भी हो तो भी आएंगे, अनन्य नहीं आएंगे, वो जरूर आएंगे, परंतु अनुभव नहीं है, परंतु उन्नति नहीं हो रही है, परंतु कोई विशेष प्राप्ति नहीं हो रही है, परंतु दिव्यता नहीं, रचनात्मकता नहीं, नवीनता नहीं, वही वही चीज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और कभी अगर किसी ने देखा नहीं तो नियम को शायद तोड़ भी दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक विशेष कैटेगरी है जिसको आज बाबा ने याद किया है। ये शब्द मुरलियों में कई बार आता है, नेमिनाथ किस किस में, एक तो अमृत वेला, मुरली मुख्य रूप से दो, उठ गए आकर बैठ गए परंतु कोई शक्तिशाली अनुभव नहीं, अमृत वेला, अशरीरीपन का अनुभव नहीं, परमात्मा प्रेम का अनुभव नहीं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं, बस बैठे हैं, बीच में थोड़ी सी झपकी भी आ गई, तो ये जो कैटेगरी है आत्माओं की, इसको बाबा ने कहा नेमी नाथ। तो मुरली में बाबा ने आज क्या देखा, क्या देख रहे हैं बाप दादा? जीवन कहानी देख रहे, जीवन लीला देख रहे हैं, तकदीर की लकीरें रेखाएं देख रहे हैं। किसकी जीवन कहानी कैसी है, लाइफ स्टोरी हरेक की बाबा देख रहे हैं। बाबा ने कुछ कलाओं की बात की है, हम उस दिन सोच रहे थे कि ब्राह्मण जीवन में कौन कौन सी कलाएं हैं। तो ऐसी सात कलाएं ब्राह्मण जीवन में, जिसमें से दो कलाओं की चर्चा बाबा ने आज की है। सबसे पहले तो चलती कला, ज्ञान में आ गए, परमात्मा परिचय प्राप्त हुआ और चल पड़े, यह है चलती कला, जिसमें चल रहे हैं, पता चल रहा है नियमों का, मर्यादाओं का, और जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे आत्मसात कर रहे, धारण कर रहे, यह है चलती कला। चलती कला में धीरे धीरे जब पता चला और भी कुछ करना चाहिए, कुछ श्रेष्ठ पुरुषार्थियों का संग मिल गया, या एक दो बार मधुबन में आ गए और भट्टिया कर ली, तो उसके बाद क्या करते हैं, फिर दूसरी कला दौड़ती कला। पहले थे चल रहे थे, अभी एक धक्का सा मिल गया कहीं से, कोई आत्मा मिल गई पावरफुल, या कहीं से कोई पावरफुल शब्द मिल गए मुरली में अचानक से, सुनते सुनते, या तो अमृत वेले एकदम से टचिंग हो गई और पुरुषार्थ थोड़ा तीव्र हो गया। तो जो चल रहे थे चलती कला से किस में आ गए, दौड़ती कला, और दौड़ते 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 पता चला चलती चल चल पहले चल रहे थे फिर दौड़ने लगे, और दौड़ते दौड़ते पता चला कि कुछ कुछ तो बहुत आगे जा रहे, तो क्या करने लगे, फिर चढ़ने लगे, क्या करने लगे, चढ़ने लगे। पहले खाली दौड़ रहे थे, अब ऊपर ऊपर चढ़ने लगे फास्ट, परंतु फिर कोई विघ्न, कोई माया, कोई परिस्थिति, और फिर रुक जाना, रुकती कला, ठहरती कला। पुरुषार्थ एकदम ठहर गया, जीवन में कोई विघ्न आ गया बड़ा सा, तो ठहरती कला, रुकती कला। और यदि विघ्न बड़ा हो तो फिर क्या होता है, गिरती शब्द अच्छा नहीं है, उतरती ठीक है, बाबा ने आज उतरना कहा है, तो क्या होते हैं, फिर उतरने लगते हैं। और एक कला है चढ़ना और उतरना, ये दोनों चीजें करते रहते हैं, चढ़ते फिर उतरते, चढ़ते फिर उतरते, चढ़ते और फिर उतरते, ये भी एक कला है। और अंतिम कला है उड़ती कला। तो ऐसी कलाएं ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण दिखाते रहते हैं, चलते हैं और चलते चलते दौड़ते हैं, और दौड़ते दौड़ते फिर कभी कभी चढ़ना चालू करते हैं और चढ़ते चढ़ते फिर रुक जाते हैं, रुकते रुकते फिर उतरते हैं और फिर छठवां उतरना चढ़ना, उतरना चढ़ना, उतरना चढ़ना। और एक अंतिम जो कला है वो है उड़ना। बाबा ने आज बात की है जीवन कहानी की। तुम्हारी जीवन कहानी में क्या है, क्या है? तीन बातें कही है। तुम्हारी जीवन कहानी में क्या है? विशेषता संपन्न जीवन कहानी है, प्राप्ति संपन्न जीवन कहानी है और रास्ता, उन्नति के रास्ता दिखाने वाली तुम्हारी जीवन कहानी है। ये तीन विशेषताएं सुनाई है। और संसार की आत्माओं की भी कोई कोई ऐसी होती है कि जिनकी जीवन कहानी से क्या पता चलता है, क्या मिलता है आत्माओं को? प्रेरणा एक, दूसरा हिम्मत, तीसरा उमंग उत्साह और चौथा सही रास्ता, स्पष्ट रास्ता पता चलता है, स्पष्ट रास्ता। तो जीवन कहानी से ये टोटल सात चीजें झलकनी चाहिए। हमारी जीवन कहानी ऐसी हो कि जिससे आत्माएं देखे तो उनको लगे कि हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो प्रेरणादायी जीवन कहानी हो। महात्मा गांधी के जीवन में वर्णन है, उन्होंने लिखा है कि बचपन में ही हरिश्चंद्र की जीवन कहानी सुनी थी, कितना गहरा प्रभाव पड़ गया बाल मन पर, सत्य का वो बीज पड़ गया। और एक वर्णन है उनके जीवन में, जब अफ्रीका में थे और ट्रेन से सफर कर रहे थे, उनके हाथ में एक छोटी सी किताब आई थी जॉन रस्किन की, अनटू दिस लास्ट। बाद में उन्होंने इस किताब का गुजराती में भी अनुवाद किया, सर्वोदया। उस किताब का उन्होंने वो किताब पढ़ी ट्रेन में, किसी ने दे दी, रात भर पढ़ते गए और सुबह तक जीवन जैसे परिवर्तन हो गया, एक नया प्रकाश, एक नई क्रांति का जन्म ले लिया। उस किताब के बाद ही फिनिक्स सेटलमेंट वहां पर स्थापन की, जिसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें लिखी थी कि जिन्होंने कभी उन्होंने कभी सुनी ही नहीं थी। वो एक चीज पढ़ते पढ़ते ही पूरी रात में जीवन बदल गया, विचारधाराएं बदल गई, एक किताब पढ़ के, अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन की, जिसमें लिखा था कि सब समान है, एक के कल्याण, विश्व के कल्याण में ही स्व का कल्याण है, ऐसा उसका थीम था। मुझे अपना कल्याण नहीं करना है, सबका कल्याण करूं तो मेरा कल्याण स्वतः ही हो जाए, ये मुख्य धारणा भावना उसमें थी। तो उसमें लेखक ने अपने जीवन की भी बातें लिखी थी और वो किताब ऐसी थी कि चार महीनों में ही उसे बैन कर दी गई थी, बहुत सारा विरोध हुआ था उस किताब का, ऐसी वो जबरदस्त क्रांतिकारी किताब थी जो उनके हाथों में पड़ गई और उन्होंने उसको जीवन ही बना लिया। आगे का सारा जो अहिंसा का जन्म दिया, अहिंसा के सिद्धांत, वो सब उसी किताब के आधार से है। तो जीवन ऐसी हो कैसी? प्रेरणादायी। जीवन ऐसी हो कैसी? उमंग देने वाली। कोई देखे या कोई पढ़े हमारी जीवन तो उसके जीवन में भी उमंग उत्साह आ जाए, हिम्मत आ जाए, हार चुकी है आत्माएं, पुरुषार्थहीन हो गई है, उतर रही है और कोई कोई तो गिर भी रही है। गिरती कला शब्द अच्छा नहीं है, परंतु स्थिति है आत्माओं की ऐसी। रास्ता दिखाए, विशेषता संपन्न, प्राप्ति संपन्न, उन्नति वाली, जो कल जो दिन था और आज का दिन है इसमें अंतर हो। श्रेष्ठ पुरुषार्थ की, तीव्र पुरुषार्थ की बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में परिभाषा दी है, एक सेकंड पहले जो स्थिति थी, अगले सेकंड स्थिति उससे आगे हो, ये तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा है, अव्यक्त महावाक्य। तो बाबा दो प्रकार की आत्माओं को देख रहे हैं, नंबर वन, नंबर टू। बाबा दो प्रकार की आत्माओं को देख रहे हैं, देवता और क्षत्रिय, दो प्रकार की आत्माओं को देख रहे हैं। पहली आत्मा चढ़ने वाली, दूसरी आत्मा उतरने वाली, दो प्रकार की आत्माओं को देख रहे, प्रत्यक्ष फल खाने वाली और मेहनत का फल खाने वाली। दो प्रकार की आत्माओं को देख रहे, फुल पास होने वाली, पास विद ऑनर होने वाली और पास होने वाली, दो प्रकार की आत्माओं को देख रहे, एक अनन्य और एक निमिनाथ। तो जो चढ़ने वाले हैं, चढ़ती कला वाले हैं, उनका भी बाबा ने वर्णन किया है। कैसी है वो आत्माएं? सहजयोगी है। कैसी है वो आत्माएं? बाबा के साथ का समीपता का अनुभव है। कैसी हुआ है आत्माएं? कंबाइंड स्वरूप, हाँ ये भी लिया जा सकता है। कैसी है वो आत्माएं? विघ्न विनाशक है। परिस्थितियां, पेपर्स उनके जीवन में भी आ रहे, परंतु वो आत्माएं कैसी है? विघ्न विनाशक है, एक से सर्व संबंध है। कैसी है वो आत्माएं? सर्व शक्तियों में मास्टर है, साथी है, साक्षी है। बाबा ने यहाँ थोड़ी परिस्थितियों की बात की है। उतरेंगे, परिस्थिति आएगी, पेपर आएंगे, परंतु जो नंबर वन वाली आत्मा है उनकी क्या निशानी है? चढ़ती कला वालों की साथी और साक्षी। छोटी बात को क्या करेंगे? बड़ा कर देंगे। प्रश्न सुना ही नहीं इसका मतलब। चढ़ती कला वाली आत्मा है, छोटी बात को क्या करेगी? खत्म कर देगी। और उतरने वाली आत्मा है, छोटी बात को बड़ा कर देगी। कैसे बड़ा करेगी? किस विधि से? कौन सी तरकीब है? कौन सी टेक्निक से बड़ा करेगी? ऐसी कौन सी उनमें स्किल है कि जिससे छोटी बात भी जो है बड़ा हो जाती है? ऐसी कौन सी वो विशेषता उन आत्माओं में है? ऐसी कौन सी वो हुनर उनमें है कि छोटी सी बात जीवन में आती है परंतु वो बड़ा हो जाती है? कैसे बढ़ती है? वर्णन। कैसे बढ़ती है? सिमरन से वातावरण में फैला देते हैं। और छोटी सी बात भी कैसे लगने लगती है? बड़ी। एक मनोवैज्ञानिक ने कभी एक प्रयोग किया था। वो स्कूल में गया और उस मनोवैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। स्कूल के बच्चों को दो हिस्से में डिवाइड किया। आधे बच्चों को, 15 स्टूडेंट्स को एक क्लासरूम में रखा, 15 को दूसरे क्लासरूम में रखा। पहले क्लासरूम में वो गया और 15 स्टूडेंट्स को कहा, अब मैं बोर्ड पर एक गणित लिखूंगा। वो गणित इतना डिफिकल्ट है कि मुझे नहीं लगता है तुम में से कोई उसको सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे जो अगली कक्षा के बच्चे हैं उनको भी यही सम दिया गया था, यही गणित दिया गया था, और उनमें से तो कोई भी नहीं कर पाया था। पर फिर भी मैं देखता हूं कि ये है तो बहुत ही कठिन, असंभव सी बात है, परंतु मुझे नहीं लगता है तुमको देख कर कि तुम में से शायद कोई भी कर पाए। करे तो बहुत अच्छा, पर देखो कोशिश करो, लगभग असंभव ही समझ लो इसको। गणित लिखता है और वहां से चला जाता है। फिर वही गणित वो दूसरे क्लासरूम में लिखता है और वहां के 15 बच्चों को कहता है कि ये जो गणित मैं अभी लिखने जा रहा हूं ये इतना आसान है, इतना आसान है कि अगर तुम में से किसी को न आए तो मुझे आश्चर्य लगा, क्योंकि तुमसे जो निचली कक्षा है उन्होंने सबने इसको कर दिया था, उन्होंने सबने इस गणित को सहज हल कर दिया था। तो मुझे देखना अब है कि तुम में से कोई भी इतना इतना बुद्धू है कि जो इसको भी नहीं कर पाए, जो तुमसे निचली कक्षा वाले सारे कर दे। वहां से वो निकल गया। परिणाम देखे, पहली क्लास में गया, उसमें केवल 3 ही लोगों ने वो प्रश्न किया हल, 12 लोग नहीं कर पाए, प्रश्न एक ही था। फिर दूसरी कक्षा में गया, वहां पर 12 लोगों ने कर दिया, केवल 3 ही लोग नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ अब बताओ, क्यों हुआ ऐसा? पहले इसमें 2 प्रकार के सजेशन होते हैं, एक होता है ऑटो सजेशन, एक होता है हेटरो सजेशन। ऑटो सजेशन अर्थात सेल्फ हिप्नोसिस, हम स्वयं से क्या सजेशन दे रहे हैं अपने आप को, और हेटरो सजेशन होता है दूसरे हमें क्या सजेशन दे रहे हैं, दूसरे हमें क्या बता रहे हैं अपने बारे में। पहली कक्षा वालों को पहले ही क्या कर दिया गया था, बता दिया गया था कि ये क्या है, बहुत कठिन है, पहले से ही बता दिया था ये बहुत डिफिकल्ट है। और यही काम हमारे जीवन में कौन करता है? हम खुद करते हैं। वहां तो उस टीचर ने कर दिया था, और ये काम हम कब करते हैं? खुद करते हैं कि ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, बहुत खतरनाक है, विकराल रूप है इसका। और सोच सोच के पहले सिमरन, फिर क्या करेंगे, वर्णन, और फिर वातावरण में फैल जाएगा, तो छोटी बात भी है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तुमको बड़ी बात को छोटा करना है और छोटी बात को नष्ट करना है। तो बड़ी को छोटा करने का साधन क्या है, चेक, चेंज, फुल स्टॉप, फुल स्टॉक, फुल पास। चेक, चेंज, फुल स्टॉप, फुल स्टॉक, फिर भविष्य के लिए और क्या हो जाएंगे, फुल पास। चेक करना स्वयं को, चेंज करना, देखना और बदलना, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, क्या गलती हो गई, क्यों यह परिस्थिति इतनी बड़ी महसूस हो रही है। बाबा ने कहा है परिस्थिति आएगी परंतु दो चीजें चाहिए, साक्षी भाव और साथी। परिस्थितियों के साथ आइडेंटिफाई कर लिया स्वयं को और साक्षी भाव खो गया। हम परिस्थितियों में इतने अंदर चले गए कि वो जो साक्षी भाव होना चाहिए था वो रहा ही नहीं है, सोच ही नहीं पा रहे, कुछ सॉल्यूशन भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि उसी में समा गए, वो और हम जैसे एक हो गए, कंबाइंड स्वरूप। किसका कंबाइंड स्वरूप, प्रॉब्लम और मैं, परिस्थिति और मैं, इन दोनों का कंबाइंड स्वरूप, तो कैसे साक्षी होकर देख पाएंगे। तो परिस्थितियां तो आएगी, तो चढ़ती कला वाली आत्माओं की निशानी फिर से कंबाइंड, चढ़ती कला वाली आत्माओं की निशानी साथी और साक्षी, चढ़ती कला वाली आत्माओं की निशानी चेक, चेंज, फुल स्टॉप, फुल स्टॉक, फुल पास। ये निशानी है एसेंडिंग स्टेज चढ़ती कला वालों की, फिर है डिसेंडिंग स्टेज उतरती कला वाले। तो ये जो स्टेज ऑफ डिसेंट है इसकी क्या निशानी है, उनका गीत कौन सा है, पहले वालों का गीत था पाया सा तो पाना था सो पा लिया, और दूसरे वालों का पाया और खोया, पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रिगेन्ड। पहले पाया था, सब कुछ मिला था, पर पता नहीं बाद में क्या हो गया। और जब मिलते हैं तो कहते हैं कि हम जब नए नए आए थे तो ऐसा ही पुरुषार्थ करते थे, सुबह सुबह उठ जाते थे 2 बजे, दिन रात लगन रहती थी, प्रश्न है अब क्या हुआ, अब क्या हो गया। पाया था कुछ तीव्र पुरुषार्थ की वो झलक, तीव्र पुरुषार्थ का वो आनंद, और फिर खो गया, और खोया इसलिए फिर से पाने का उमंग है, परंतु एक्स्ट्रा अटेंशन और एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। परंतु करने के बाद भी किस नंबर में आ जाएंगे, नंबर 2 में आ जाएंगे। तो ये सेकंड कैटेगरी। फिर बाबा ने मेहनत की बात की है, एक है प्रत्यक्ष फल खाने वाले, कोई मेहनत नहीं देवता बनेंगे, दूसरे है मेहनत का फल क्षत्रिय बनेंगे, उसमें भी 2 कैटेगरी है। किसी किसी का जन्म ही मेहनत से हुआ है, किसी किसी का जन्म से ही मेहनत, मेहनत से किसका जन्म हुआ, कौन थे जो कि बार बार ब्रह्मा कुमारी आती थी, आओ आओ आओ, परंतु कहते थे बाद में देखेंगे। बड़ी मुश्किल से और बड़ा महंगा जन्म होता है किस किस का, मुश्किल से जन्म, जन्म हुआ उसमें भी मेहनत, और बाद में फिर पुरुषार्थ में भी मेहनत, कई साल लग गए तीव्र पुरुषार्थी बनने में। वो है बचपन में मेहनत ही मेहनत। कारण बाबा ने बताया 2 चीजों की कमी, कौन से 2 चीजें, रेल की पटरी, कौन सी 2, श्रीमत और दृढ़ संकल्प। तो जहां श्रीमत है और जहां दृढ़ संकल्प है वहां क्या होगा, मेहनत नहीं, सहज होगा, सहज अनुभव, सहज सर्व प्राप्तियां। श्रीमत पर जैसे एक्यूरेट चलना और दृढ़ संकल्प से, दोनों में से कोई भी चीज कमी ना हो। ये एक अंतर बाबा ने यहां पर बताया, क्षत्रिय और देवता आत्माओं का। उसके बाद में कुछ चिटचैट की बातें हैं। कौन सी? बाप दादा कितने मिनट में सेवा करते हैं? एक सेकंड में, और बाद में बहुत सारा खाली टाइम बचता है, तो उसमें क्या करते हैं दोनों? रूरियान करते हैं। कौन सी रूरियान करते हैं? फिर से दो बातें, ब्रह्मा की पहली अवस्था और अंतिम अवस्था। पहली अवस्था के बोल क्या थे? आ रहा हूं, समा रहा हूं, एक ही नशा, एक ही संकल्प, संपन्न बनना है बाप समान। और लास्ट में भी समानता की दृष्टि, जैसे कि पंछी उड़ गया, डबल लाइट, नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप। जैसे कि पंछी, पंछी और सांप, दो उदाहरण दिए बाबा ने। तो जो कहते थे, जो भावी थी, भावी के जो बोल थे वो साकार हो गए, वैसा ही वो बन गए। ऐसी स्थिति जो हुई उसका भी आधार क्या है? जो पहले के बोल थे या पहले के संकल्प थे वो। तो ये एक बात की। और आज हम विशेष आज की क्लास में कुछ दूसरी बातें चर्चा करने वाले हैं। शायद ये बातें इसके पहले कभी चर्चा नहीं की थी। डबल विदेशियों से मुलाकात, बाबा ने क्या कहा उनको? नहीं हो, सहयोगी हो, सेवा में उमंग उत्साह है। क्या चाहिए? शक्ति रूप चाहिए। शक्ति रूप है तो क्या होंगे? विघ्न विनाशक होंगे। विघ्न विनाशक के लिए क्या चाहिए? कंबाइंड। और कंबाइंड के लिए क्या चाहिए? सर्व संबंधों का एक से अनुभव। एक ही चीज यदि बार बार की जाए, सुनी जाए, देखी जाए तो क्या हो जाते हैं? उदास, कहा बाबा ने, चाहे कितनी भी अच्छी हो। इसके लिए रमणीकता चाहिए। अगर एक से ही भिन्न भिन्न संबंधों का क्या करना? अनुभव। अगर ऐसा हो तो रमणीकता रहेगी, खुशी रहेगी, उमंग उत्साह रहेगा। तो आज हम बाबा से हमारे जो संबंध है, मुख्य कितने संबंध है? मुख्य आठ। आठ में से मुख्य तीन, तीन में से मुख्य एक। आठ कौन कौन से? बाप, टीचर, सदगुरु, साजन, माता, पिता, बच्चा। एक में आ गया, बाप और पिता एक ही है। बंधु, उसके बाद दोस्त हो गए, बच्चा। टोटल आठ, मुख्य आठ। आठ में से तीन बाप, टीचर, सदगुरु मुख्य, उसमें से एक बाप। तो आज हम बाबा से ऐसे 108 संबंध, इसकी चर्चा करेंगे। कितने संबंध? 108। डायरी जिनके पास है वो डायरी खोल लेना है। आज की क्लास में खाली नोट करेंगे और फिर उनका रोज सारे दिन भर में कोई भी एक संबंध उठाकर उसका अनुभव करना। जो जिस प्रोफेशन में है, जो जिसकी सेवा है, उस अनुसार भी कुछ कुछ यहाँ पर बातें हैं। वो बातें उठाना और उनका उसी रीति से अनुभव करना। जब ये अनुभव होगा तो ही रमणीकता होगी, तो ही खुशी होगी, तो ही उमंग उत्साह होगा। नहीं तो वही 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 वही, बाबा ने भी कहा ना, वही बाप वही बच्चा, बस एक ही संबंध, भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव। इतनी रमणीकता हो, इतनी रमणीकता हो हमारी बातें करने में, उससे सुख का अनुभव हो, स्ट्रेस ना हो, सुख का अनुभव। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, रामचरितमानस में लिखा है कि राम, तुलसीदास कहता है, मैं ये जो रामचरितमानस सुना रहा हूं, किस लिए सुना रहा हूं? स्वयं के लिए, अपने खुद के सुख के लिए, पांडित्य के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, स्वांत सुखाय, स्वयं के सुख के लिए। तुलसी रघुनाथ गाथा। इससे पहले कि हम ये लिस्ट चालू करें 108 संबंधों की, और एक बात बाबा ने कही है महावीर के संबंध में। महावीर को क्या कहा? महावीर अर्थात हनुमान। कैसा है वो? एक राम दूसरा न कोई, राम रसायन तुम्हारे पासा, ऐसा जिसके हृदय में केवल एक केवल राम है और कोई नहीं है। अतुलित बल धामा, अतुलित अतुल बल है जिसके पास, परंतु हृदय में केवल और केवल कौन है? राम है। एक का ही है, एक से ही सर्व संबंध है। विजय का तिलक अविनाशी लगा हुआ है। एक ही संसार है, संसार में वस्तु वैभव, वस्तु व्यक्ति सब है, सारी प्राप्तियां वस्तु है, व्यक्ति एक ही है। दिखाया है एक जगह राम वाल्मीकि रामायण में कि हनुमान रावण की लंका में आता है क्योंकि वहां पर एक ऐसा खंभा है, उस खंभे में रावण को मारने का एक शस्त्र छिपा हुआ है। तो वो हनुमान एक साधारण वानर के रूप में लंका प्रवेश करता है, उस खंभे को तोड़ता है और वो शस्त्र लेकर भागने लगता है। तो मंदोदरी उसे देख लेती है, मंदोदरी को पता है कि वो जो अस्त्र है उसी से रावण की मृत्यु हो सकती है। तो वो उस बंदर को देख के उसे एक फल दिखाती है और उसको लालच देती है, ये बंदर आओ खाओ, ताकि वो शस्त्र दे दे। परंतु हनुमान अपना रूप प्रकट करता है और फिर वहां पर एक श्लोक और एक गीत गाता है जिसका अर्थ ऐसा है कि मैंने तो केवल और केवल राम रूपी कल्प वृक्ष है, मैं केवल उसी के फल खाता हूं, मुझे तुम्हारा कोई फल नहीं चाहिए, इस संसार का कोई फल नहीं चाहिए, एक फल के अतिरिक्त मैं और कोई दूसरा फल नहीं खाता। पूछा है उससे कभी कि समय कौन सा हो रहा है, एक जगह पूछा हनुमान से, तो वो कहता है मैं केवल और केवल राम का ही सोचता है, समय क्या है, नक्षत्र क्या है, दिन है या रात है, मुझे कुछ पता नहीं। ऐसा हनुमान का चरित्र दिखाया हुआ है। तो बाबा कह रहे तुम सब कौन हो? हनुमान हो, तुम्हारे एक के हो, महावीर हो, अविनाशी, विजय का तिलक लगा हुआ है। एक ही संसार है। मधुबन में आते हैं तो ये दूसरा पॉइंट है कि दिन कब होती है और रात कब होती है पता ही नहीं चलता है। तो अभी हम देखेंगे बाबा से कितने संबंध, 108। एबीसीडी आती है ना सबको? पूछ ले। तो ए से लेकर तो जेड तक बाबा से 108, जो जिसको पसंद है इसमें से उठा ले, लिख तो सभी ले और फिर उसका प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि केवल निमिनाथ नहीं, धारणा नहीं, ऐसा नहीं, पता तो हो गया पर प्रयोग नहीं कर रहे, ये नहीं। तो हम ए से चालू करेंगे। ए में दो है, अंग्रेजी के शब्द है जिसका हम हिंदी में अर्थ बताएंगे। ए फॉर आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट अर्थात शिल्पकार। बाबा कौन है? शिल्पकार है। मैं शिल्पकार के सामने बैठा हूं। शिल्पकार क्या करता है? इमारत बनाते हैं, बड़े बड़े भवन महल बनाने वाला। और बाबा मुझे एक ऐसा एक सुंदर महल बना रहा है। पिछले सीजन की मुरली में था खुशी के महल बन जाओ। क्या बन जाओ? खुशी के महल। तो बाबा मुझे ऐसा एक खुशी का महल बनाने वाला कौन है? वो शिल्पकार। ए फॉर आर्किटेक्ट। दूसरा है ए फॉर एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट अंग्रेजी शब्द है जिसमें हिंदी में कहते हैं किमियाकार, मतलब रसायन बनाने वाला। पहले जब केमिस्ट्री नहीं थी तो एल्केमी थी। एल्केमी में ऐसे द्रव्य को ढूंढा गया था, उस पारस पत्थर की खोज थी या पेनासिया की खोज थी कि जो सारी बीमारियों को ठीक करे। तो वो जो रसायन बनाने वाला है, राम रसायन तुम्हारे पासा, ऐसा वो रसायन हमारे हृदय में, पवित्रता का वो रसायन, पवित्रता का रस, पवित्रता का अमृत हमारे अंदर भर दे कि हम परिपूर्ण हो जाए। तो ऐसा एल्केमिस्ट का एक अर्थ ये भी है ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला, बदलाव लाने वाला। पाउले कोहेलो की एक किताब है एल्केमिस्ट, जिसकी कभी यहां पर चर्चा की थी हमने। तो ए फॉर आर्किटेक्ट, ए फॉर एल्केमिस्ट। उसके बाद है बी। बी से क्या क्या है? बी फॉर ब्रदर, भाई। किस किसने बनाया उसको अपना भाई? बड़ा भाई होता है ना, जो घर में छोटे होते हैं बड़े भाई पर बड़े बड़े डिपेंडेंट होते हैं। बड़ा नशा भी होता है कि मेरा बड़ा भाई ये है। तो मेरा बड़ा भाई भगवान है, बोल देना सबको दूसरी आज से। फिर है बी फॉर ब्यूटिशियन, ब्यूटिशियन अर्थात सौंदर्य प्रसाधक, ब्यूटी पार्लर होते हैं ना, वहां पर ब्यूटिशियन होते हैं। तो बाबा मुझे क्या कर रहा है, बहुत ब्यूटीफुल बना रहा है, श्रृंगार कर रहा है मुझे। फिर बी फॉर बॉडीगार्ड, बाबा कौन है मेरा, अंगरक्षक, संरक्षक, अकेले हम जा रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा है, तो क्या समझना मेरा बॉडीगार्ड कौन है, स्वयं भगवान मेरा बॉडीगार्ड, आगे पीछे सब तरफ से मैं सुरक्षित हूं, कोई मुझे बाल भी बाका नहीं कर सकता है। बाइबल में वर्णन है, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, यू आर वेरी हेयर इज नंबर्ड, तुम्हारा सिर का एक एक बाल गिना हुआ है, जाओ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बाल भी गिना हुआ है। तो बी फॉर बाबा हमारा कौन है, अंग रक्षक है। इसका अनुभव किया है सबने कि जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई कि खतरनाक, डेंजरस, और ऐसा लगा कि बाबा एकदम अंगरक्षक जैसा आ गया और हमारा बचाव हो गया। तो उसका अनुभव करना है हर दिन, नए नए सामान, नए नए इन चीजों का अनुभव करना है। एक दिन ऐसा ले लेना कि सारे दिन भर सुबह से लेकर रात तक यही अनुभव कि बाबा कौन है, मेरा अंगरक्षक है, जहां मैं जाऊंगा वहां पर मेरा बॉडीगार्ड साथ में आगे पीछे रहेगा। फिर है बी फॉर बोटमैन, बोटमैन अर्थात खिवैया, अर्थात केवट, अर्थात नैया पार करने वाला। हमारा जो जीवन है वही एक नैया है, और इस नैया को मेरे जिंदगी की कश्ती, गीत है ना, उस पार ले चले हो, रफ्ता रफ्ता इसको रफ्तार में लिए हो। तो मेरे जिंदगी की कश्ती कौन लेके जा रहा है, वो। हमें डर नहीं अब तो कैसे पार होंगे, हाथों में पतवार जब लिए हो। सुंदर गीत है, यज्ञ का बना हुआ। तो हमारे जीवन की नैया की पतवार किसके हाथ में है, और वो कौन है, खिवैया है। तो बी फॉर बोटमैन, उसके बाद में बी फॉर ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम अर्थात दूल्हा। दूल्हा आ रहा है। क्या करने आ रहा है, दुल्हनिया को ले जाने के लिए आ रहा है। तैयार है जाने के लिए, ब्यूटी, पहले तो ब्यूटी सुंदर बना दिया, अभी ले जाने आया है। फिर उसके बाद में है बी फॉर बार्गेनर अर्थात सौदागर, बी अर्थात बार्गेनर, बार्गेन करना अर्थात सौदा करना अर्थात सौदा। बाबा से हमने क्या सौदा किया है, क्या दिया और क्या लिया, तुम क्या देते हो और क्या लेते हो, विकार, कमजोरी, पुराने संस्कार, सब कुछ दे देना है। फिर उसके बाद में बी फॉर ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ अर्थात लोहार, लोहार क्या करता है, लोहार ठोक ठोक के, ठोक ठोक के, ठोक ठोक के क्या करता है, ठीक करता है, आग में डाल डाल के बदलता है। आग में डालना पड़ता है लोहा के, उसके सिवा बदलता नहीं है। तो आग में जब पड़ो तो क्या सोचना कि अभी कुछ बदलाव होने वाला है, परिवर्तन। बी फॉर ब्रह्मा लैंडलॉर्ड, ब्रह्मा का मकान मालिक, ब्रह्मा का मकान मालिक, यदि वो ब्रह्मा का मकान मालिक है तो मेरा भी इस मकान का वो मालिक है। तो जैसे मकान मालिक इस घर को रखे वैसे ही रहना है, कंप्लेंट नहीं करनी है उससे बार बार, ये घर किसका है, शरीर, ये समझना कि ये जैसे ब्रह्मा ने ये समझा कि ये मेरा शरीर नहीं है उसका है, हमें भी समझना है ये मेरा नहीं है किसका है, उसका है। भोग और विलास के लिए ये नहीं है, तप के लिए है, साधना के लिए, विश्व कल्याण के लिए है, सेवा के लिए है, उपभोग के लिए नहीं है। तो बी फॉर ब्रह्मास लैंडलॉर्ड, बी फॉर ब्रदर, बी फॉर ब्यूटिशियन, बी फॉर बॉडीगार्ड, बी फॉर बोटमैन, बी फॉर ब्राइडग्रूम, बी फॉर ब्लैकस्मिथ, बी फॉर बार्गेनर। उसके बाद में चार बी और है, बिस्टोवर ऑफ डिवाइन इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि दाता। कभी बाबा से केवल ये संबंध जोड़ना, बाबा के सामने बैठो कि बाबा ये बुद्धि को दिव्य बना दो, वो हाथ लगाए और बुद्धि दिव्य हो जाए। फिर है बिस्टोवर ऑफ लिबरेशन एंड लिबरेशन इन लाइफ, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। फिर है बिस्टोवर ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य विधाता। फिर है बिस्टोवर ऑफ ब्लेसिंग, वर दाता। सारे दिन भर ये अनुभव कि बाबा क्या है, वरदाता है। हाथ उसने सिर पर रखा और हमने कोई वरदान ले लिया। बार 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 बार, जैसे मुरली में एक वरदान आ गया सुबह, उसी वरदान को कई बार अनुभव करो कि बाबा हाथ रख रहा है और वो वरदान मैं अनुभव कर रहा हूं। तो ये हो गया बी के कितने, 12। ए से थे 2। फिर है सी, सी फॉर, पहले आप बताओ फिर हम बताएंगे। चाइल्ड, बाबा के साथ संबंध जोड़ना है। सी, उसको क्या बनाना, अपना बच्चा। भक्ति मार्ग में 5 प्रकार की भक्ति बताई है। एक है शांत भक्ति, जिसमें वो मालिक है और ये सारा संसार उसकी संतान है, उसकी जैसी रचना है। एक दूसरी भक्ति है वात्सल्य भक्ति, यशोदा की। कृष्ण को क्या समझा, अपना बालक, तो भगवान को अपना बेटा। तो कुमारों ने भगवान को अपना बेटा बनाया है क्या? माताओं ने तो बहुत बना लिया, कुमारों को थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, वो खुद ही कुमार है नहीं तो अधर कुमार हो जाते थे। ठीक है, तो चाइल्ड दूसरी प्रकार की भक्ति है, वात्सल्य भक्ति। तीसरी भक्ति है सखा भक्ति, कृष्ण और अर्जुन, भगवान को क्या बनाना, अपना दोस्त। सुदामा, आज फ्रेंडशिप डे है, आज फ्रेंडशिप डे है ना, तो सखा भक्ति। उसके बाद है दास्य भक्ति, हनुमान और श्री राम, सदा रहो रघुपति के दासा, स्वयं को सदा दास समझा। और कुछ कुछ भक्त तो कहते हैं दासानुदास, भगवान के दास के भी दास के भी दास है हम ये उनकी नम्रता है, ऐसा वो कहते हैं कि इतने उसका जो दास है, उसका जो दास है, उसका मैं दास हूं। और 5वीं भक्ति है मधुरा भक्ति, मधुरा भक्ति अर्थात भगवान पति है, प्रेमी है, गोपिया, राधा, मीरा, मधुरा भक्ति, गुलाब महाराज, ये सारे। फिर है सी से पहला है चाइल्ड, दूसरा है सी से केयरटेकर, केयरटेकर अर्थात मेरा देखभाल करने वाला। फिर के सी से है चैरियोटीर अर्थात सारथी, हम रथ है और वो क्या है, सारथी है, ये जो जीवन रूपी रथ या देह रूपी रथ को वो चला रहा है। फिर है चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, मुख्य प्रशासक, जैसे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के सामने हम खड़े हैं वो कैसी भावना होती है, वैसा एक दिन सारे दिन ये अनुभव करना है। फिर है चीफ एडिटर ऑफ वर्ल्ड टाइम्स, मुरली क्या है, कल की मुरली, ये है बेहद का समाचार, तो हम कौन हो गए, बेहद के पत्रकार। और जब पत्रकार की सभा होती है किसके सामने बैठते हैं, वो उनका जो मुख्य एडिटर होता है संपादक, उसको बताते हैं। तो ये मुरली क्या है, वर्ल्ड टाइम्स, वो है टाइम्स नाउ, टाइम्स ऑफ इंडिया, यह है वर्ल्ड टाइम्स का चीफ एडिटर कौन है, शिव बाबा। 5 मिनट में 50 खबरें फिर है कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर अर्थात नृत्य निर्देशक, नृत्य जो होता है ना हमारे जीवन का, बाबा ने कहा है ज्ञान डांस करो, मन का डांस, मन की शांति, मन शक्तिशाली, मुरली चली थी पहली, तो उसका जो निर्देशक है वो है। हम कैसी, हमारी डांस में कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं आंगन को ही दोष तो नहीं दे रहे आंगन में ही तो दोष नहीं निकाल रहे, जबकि दोष हमारे नृत्य में है। सी फॉर कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट अर्थात हृदय रोग विशेषज्ञ, अगर हार्ट का किसको प्रॉब्लम है, बार बार दुखी होना, सेंसिटिव नेचर, उदास, मुरझाना, छुई मुई, हार्ट अटैक, अरिदमियाज, हार्ट ब्लॉक्स, कुछ भी है, तो क्या करना है, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करना है। और वैसे भी अगर किसी को हो भी हार्ट की प्रॉब्लम, तो भी इससे बड़ा कोई कार्डियोलॉजिस्ट है क्या, कोई नहीं। फिर तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सी से 7। फिर है डी, डी फॉर डाइटिशियन, क्या डाइट खाना है और क्या नहीं खाना है कौन बताएगा? शिव बाबा। तो डाइटिशियन वजन किस किस को कम करना है? सबको। तो बेस्ट डाइट रिजिम कौन बताएगा? बाबा ही बताएगा। फिर है डी से डायरेक्टर। ये जो ड्रामा है, हर एक्टर को अपने डायरेक्टर का बार बार पूछते रहना चाहिए, मैं ठीक तो चल रहा हूं, मेरी एक्टिंग ठीक तो है, क्योंकि मूवी उसके नाम से रिलीज होगी। फिर है ड्रेस मेकर और या तो टेलर, दर्जी। बाबा से रोज नए नए ड्रेस ले लेना है पहनने के लिए सुबह सुबह। फरिश्ता, देवता, ठीक है अशोक भाई, नए नए ड्रेस बाबा से लेते रहना। फिर है डी से डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट अर्थात त्वचा रोग विशेषज्ञ। त्वचा रोग विशेषज्ञ अर्थात चमड़ी का रोग बहुत पुराना है, चमड़ी को देखने का रोग और चमड़ी में रस लेने का रोग बहुत पुराना है, तो इस रोग की बीमारी को यही ठीक करेगा। डी फॉर डायबिटोलॉजिस्ट। उस दिन क्लास कराई थी मैं, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो निमित्त भाव का इंसुलिन वहां चाहिए, कौन देगा? डायबिटोलॉजिस्ट। डी फॉर डिवाइन स्टोरी टेलर। बाबा जैसी कहानियां कोई और सुना सकता है क्या? कितनी कहानियां आती है, जैसे 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 वो रेल की पटरी, जैसे तुम मधुबन में आते हो तो कितनी सारी, जैसे वो नेमीनाथ, बहुत सारी मुरलियों में कहानियां आती है। तो कभी सोचो कि बाबा कभी बहुत उदास हो जाए, बोर हो जाए तो क्या करना है? कहानियां सुनना है बाबा से। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ से, नानी से क्या सुनते हैं? कहानियां सुनते हैं। तो डिवाइन स्टोरी टेलर। डी फॉर डेकोरेटर, वो डेकोरेट करता है। डी फॉर ड्राइवर, जो गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर, क्या समझना है? गाड़ी कौन चला रहा है? मैं नहीं, बाबा, वही ड्राइवर है। जीवन की गाड़ी को कौन चला रहा है? बाबा चला रहा है, इसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर है ई। ई से दो है, एक है ईएनटी स्पेशलिस्ट, दूसरा ई से क्या है वो लास्ट में बताएंगे। ई से कान से क्या सुनना है, क्या सुनना है और क्या बोलना है गले से। गले से कोई अगर प्रॉब्लम है, निकल नहीं रही आवाज, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। एफ, एफ से पांच है। सबसे पहला एफ जो सबको पता है, फादर, पिता। एफ से फ्रेंड, आज फ्रेंडशिप डे है। एफ से फॉर्चून टेलर, बाबा क्या है? ज्योतिषी भी है। कभी कभी अपना हाथ बाबा के सामने रखना और कहो बाबा देखो जरा क्या है, तो बाबा देखेगा, अरे तुम तो क्या तुम्हारी रेखा है तो बहुत लंबी है, ऐसा लग रहा है तुम तो राजा बनने वाले हो, महाराजा। तो बाबा फॉर्चून टेलर भी है, ज्योतिषी भी है। कोई भी इंटरव्यू जाने से पहले, कोई भी सेवा जाने से पहले हाथ दिखा तो बाबा कह देगा, अरे बिल्कुल सफलता हुई पड़ी है, जाओ, पूछने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा हाथ दिखा के जाना बाबा के कमरे में, बाबा देख लो हाथ, ठीक है। फिर है एफ से फायर एक्सटिंग्यूशर, अग्निशामक। फायर एक्सटिंग्यूशर होता है ना, कौन सी आग लगी है संसार में? काम विकार की आग लगी है, बाप आए हैं, कई बार मुरलियों में आया है फायर बुझाने के लिए। और एक भाई ने मुझे ये सजेस्ट किया आज, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। एफ फॉर फाइनेंशियल कंसल्टेंट, पैसों का क्या करना है बताओ, कैसे लगाए, कितने इधर दे कितने उधर दे, कितने खर्च करे कितने न करे, बढ़ाए कैसे, जमा कहां करे, बैंक में कितने रखे, ये सारी चीजें। फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जिसको अपने जीवन में पैसों की बहुत चिंता है और समझ में नहीं आता है क्या करना है, नोटबंदी नेक्स्ट कब होने वाली है, सब पूछ सकते हैं। तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट, तो एफ से पांच। फिर है जी, जी से तीन। पहला है जी से कौन बताएगा? गार्डनर, बागवान। जी से गाइड, बाबा को गाइड के रूप में यूज करना। जीवन में कोई भी समस्या है, इस बजाय इसके कि इसको फोन उसको फोन, इसको पूछूं उसको पूछूं, बैठ जाओ और देखो कि बाबा गाइड है, बताओ क्या करना है, वो बताएगा, प्लीज गाइड। फिर है गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ अर्थात सुनार, अच्छे अच्छे गहने बना रहा है वो, और हम वो सोना है। तो तीन जी से हो गए। फिर है एच, एच से सात। पहला एच से हस्बैंड, पति किस किस ने बनाए हैं? सबने बनाए, बनाएंगे, बना दिया। एच फॉर हीलर, हीलर अर्थात रोग हर, आरोग्य साधक, जो हील करता है, हीलिंग होता है ना, हीलिंग, हीलिंग करने वाला, फेथ हीलिंग बहुत प्रसिद्ध होते हैं, फेथ से ही हील कर देते हैं, वैसे वो हीलर है। ही एच से हर्बैलिस्ट, ये साकार मुरलियों में आया है शब्द हर्बैलिस्ट, हर्बैलिस्ट अर्थात जो कि वनस्पति विज्ञान से ठीक करता है, वनस्पति देता है, जड़ी बूटियां, संजीवनी बूटी। एच से है हिस्टोरियन, हिस्टोरियन अर्थात इतिहासकार, इतिहास पूरा बताता है, अपने जीवन का इतिहास, पूरे सृष्टि चक्र का इतिहास। एच फॉर हॉस्टल वार्डन, ये बाबा ने क्या है, तुम्हारा हॉस्टल है, हॉस्टल में अगर कुछ भी समस्या आ गई तो किसको बतानी चाहिए, वार्डन को जाके बताओ, पानी कम है, बिजली है, नहीं है, तो वो सब दे देगा। हेड ऑफ ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण परिवार का मुखिया, शिव बाबा, मुखिया जो होता है परिवार का, कुछ भी समस्या हुई तो उसके पास जाना होता है। एच फॉर हेवन मेकर, स्वर्ग रचयिता, तो एच से कितने हो गए, सात। फिर है आई, आई से है इंस्पायरर, प्रेरणा देने वाला, कभी ऐसा देखो उसको कि वो प्रेरणा दे रहा है। आई फॉर इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट, जो आईसीयू देखने वाले इंटेंसिविस्ट होते हैं ना, उनको कहा जाता है इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट, जो आईसीयू देखते हैं, सीरियस पेशेंट देखते हैं, तो कभी कभी बाबा को उस रूप में देखो कि बाबा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है, इंटेंसिविस्ट है। फिर है इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट, अर्थात संक्रमण रोग विशेषज्ञ होते हैं, कुछ कुछ जब संक्रमण हो जाता है और नहीं ठीक होता है तो इसकी एक स्पेशलाइज पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। तो इन्फेक्शियस डिसीज, कौन सी बीमारी हमको है, कहां से संक्रमण लग गया है, वो पूरा ढूंढ के निकालते हैं, उसी अनुसार ठीक करते हैं। आई फॉर इंस्ट्रक्टर या कोच, बाबा क्या कर रहा है, कोचिंग दे रहा है, मुझे कुछ आ नहीं रहा है हमसे, बैठ जाओ उसके कमरे में जाके और उसको कहो कि मेरी कोचिंग करो, कोच तो मिल नहीं रहा है दूसरा कोई, तुम ही हो एक कोच, प्रशिक्षक। जे, जे से दो है, एक है जज या तो धर्मराज, उसको किस रूप में देखो, धर्मराज, उसकी, उस धर्मराज की अदालत में बैठ जाओ। जे फॉर ज्वेलर, जोहरी, अच्छे अच्छे वो बना रहा है, मैं क्या हूं, अनगढ़ हूं, वो इस अनगढ़ धातु से अच्छे अच्छे क्या बना रहा है, ज्वेलरी बना रहा है। के, के फॉर कीपर ऑफ रिकॉर्ड, उसके पास सारे रिकॉर्ड्स है, कीपर ऑफ रिकॉर्ड नाम के एक जॉब होता है, एमआरडी, जैसे हॉस्पिटल में एमआरडी सेक्शन होता है, मेंटेनेंस सब कुछ वहां पे रिकॉर्ड रहता है, तो हमारे जीवन का 84 जन्मों का सारा रिकॉर्ड उसके पास है। के फॉर किंग मेकर, वो मुझे राजा बना रहा है। फिर है एल, एल फॉर लॉन्ड्री मैन अर्थात धोबी, कपड़ा बहुत खराब हो गया है, वो क्या कर रहा है, मूत पेली थी कपड़ धोए। लाइफ गार्ड, लाइफ गार्ड अर्थात जब जो पानी में डूबते हैं उनको बचाने वाला जो होता है, जीवन रक्षक, एक रीति से गोताखोरी होता है वो, तो उसको कहते हैं लाइफ गार्ड। एल से है लिसनर, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि जो हमें निरंतर सुनता रहे, अगर किसी के सामने अपनी समस्या बताओ तो बोर हो जाएगा, कहेगा बाद में, अभी ये कि ऐसा है कि रात भर भी सुनाओ तो भी सुनता रहेगा। एम से पांच, पहला है एम से सबको पता है मदर, मां उसको बनाओ, मां मां मां, बहुत मैया शिव मां, एक अनोखा संबंध है। मां, एम से मास्टर, वो हमारा मास्टर है, हमारा मालिक है, जैसा वो कहे राजी तेरी रजा में। एम से मैजिशियन, जादूगर है, बाबा ने कहा मैं जादूगर हूं, कुछ भी कर सकता है, जादू है उसके पास। एम से मैग्नेटोथेरेपिस्ट, चुंबक चिकित्सक, बहुत सारी बीमारियां किससे ठीक नहीं होती, वो चुंबक से ठीक हो जाती है, उसके पास भी ऐसा चुंबक है बहुत सारे। एम फॉर मेड, सेविका, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं, दाई, मेड, इस तरह से। एन फॉर, तीन है एन से, नर्स, बीमार होते हैं तो नर्सिंग करता है हमारी। एंड फॉर न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट असता एक तो कहा हमने डाइटिशियन जो डाइट प्रिस्क्राइब करती है, एक होता है जिसके पास न्यूट्रिशन का बहुत ज्ञान है कि इसमें अच्छे तत्व है, पोषक तत्व, वो आपको बताएगा। एक है न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन की प्रॉब्लम यदि है तो वो ठीक करेगा। ओ से सबसे पहले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, अगर आपकी बीमारी है कुदृष्टि, दैहिक दृष्टि, तो वो ठीक करेगा। ओ फॉर ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट अर्थात कैंसर स्पेशलिस्ट, परचिंतन का कैंसर, परदर्शन का कैंसर है तो वो ठीक करेगा। ओ फॉर ऑर्थोपेडिशियन, ऑर्थोपेडिशियन अर्थात हड्डी वाले डॉक्टर, इमोशनल फ्रैक्चर अगर हो गए हैं जीवन में, बहुत सारे ट्रॉमा है तो वो ठीक करेगा। ओ फॉर ऑपरेटर, हमारे जीवन को चलाने वाला। पी से है सात, पहला है साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अर्थात मनोवैज्ञानिक, उसके पास इतना डीप साइकोलॉजी का ज्ञान है कि वो हर प्रकार का ज्ञान हमें दे सकता है। हर 70s 80s की मुरली में गहन साइकोलॉजी है जो आज तक संसार में और कहीं नहीं है। फिर है साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट दवाई देता है, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में थोड़ा अंतर है, साइकियाट्रिस्ट दवाई देता है, साइकोलॉजिस्ट काउंसिलिंग ज्यादा करता है, दवाई कम देता है। पी फॉर फिजिशियन, चिकित्सक। पी फॉर प्यूरिफायर, पतित, पावन, पावन बनाने वाला। पी फॉर फिलोसोफर स्टोन अर्थात पारसमनी। पी फॉर पायलट और पी फॉर फिलोसोफर, फिलोसोफर ऐसा फिलोसोफर और कोई नहीं है संसार में, जो फिलोसॉफी उसने दी है हमको, ऐसी फिलोसॉफी और कहीं पर भी नहीं है। क्यू फॉर क्वालिटी इंस्पेक्टर, गुणवत्ता निरीक्षक, हर बड़ी कंपनी में या जगह पर एक क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है, तो हम उसको एक दिन पूरा दिन देखें कि मेरे जीवन की जो क्वालिटी है उसमें कहीं दोष तो नहीं है, तो वो क्वालिटी इंस्पेक्टर है, वो दिन भर इंस्पेक्ट कर रहा है। आर फॉर रिमूवर ऑफ सोरो एंड गिवर ऑफ हैप्पीनेस अर्थात दुख हरता सुख करता। आर फॉर रेफरी, एक एम्पायर होता है क्रिकेट में, उसको रेफरी कहा जाता है। आर फॉर रिडीमर या फिर लिबरेटर। आर फॉर रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट क्या करता है, एक्सरे वाला जो होते हैं ना डॉक्टर, सीटी, एमआरआई, हमारे जीवन के एक्सरे में कहां क्या दोष है वो केवल रेडियोलॉजिस्ट ही देख सकता है, बाबा स्पिरिचुअल रेडियोलॉजिस्ट है। फिर है एस, एस से बहुत सारे है, टाइम पूरा हो रहा है, इसको हम खाली गिनाएंगे। एस सबसे पहला सदगुरु, सबको पता है। एस सेवियर अर्थात बचाने वाला। एस सर्जन, बाबा कहते हैं मैं कौन हूं, सुप्रीम सर्जन हूं। एस स्क्रिप्ट राइटर, कथा लेखक, जीवन की सारी कथा लिखने वाला वो है। एस फॉर स्कल्प्टर, एक कहा था आर्किटेक्ट, शिल्पकार, ये है स्कल्प्टर अर्थात मूर्तिकार। एक है सुप्रीम ऑडिटर, ऑडिट करते हैं ना, तो हमारे जीवन का ऑडिट करने वाला ये परम लेखा परीक्षक है। फिर है स्पीच थेरेपिस्ट, जिनको बोलना नहीं आता है, हॉस्पिटल में भी है स्पीच थेरेपिस्ट, वो स्पीच की थेरेपी देते हैं, जिनको बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सबसे अच्छा बोल तो वही बोलता है, तो वही सिखाएगा। सुप्रीम कमांडर, इस सेना का कमांडर कौन है, शिव बाबा। सुप्रीम गेस्ट, वो गेस्ट बनकर आया है। सुप्रीम काउंसिल, स्पिरिचुअल काउंसिलर, हॉस्पिटल में भी स्पिरिचुअल काउंसिलिंग है, कई लोगों को दवाइयां काम नहीं करती, उनको काउंसिलिंग की ज्यादा जरूरत होती है, दवाइयां काम नहीं करती, तो स्पिरिचुअल काउंसिलिंग। एस फॉर सस्टेनर अर्थात पालन करने वाला। एस फॉर सोल मैकेनिक, गाड़ी अगर सोल है तो इसको खराबी जो हो गई कौन ठीक करेगा, कारीगर, शिव बाबा। शिप कैप्टन, ये जो जीवन का जो शिप है इसका कैप्टन कौन है, वो है। एस फॉर सिस्टर, सिस्टर किस किस ने बनाया शिव बाबा को, बहन राखी आ रही है। टी से तीन, टी से चार, टी से सबसे पहला तो टीचर। टी से ट्रबल शूटर, जो कंप्यूटर यूज करते हैं उनको पता होगा ट्रबल शूटिंग, कोई भी मुश्किल हो जाए उसको दूर करने वाला ट्रबल शूटर होता है। ट्रांसप्लांट सर्जन अर्थात प्रतिरोपण शल्य चिकित्सक, ट्रांसप्लांटेशन करता है, हार्ट ट्रांसप्लांट बदल देता है। बाइबल में एक जगह लिखा है, ओ गॉड टेक अवे दिस स्टोनी हार्ट एंड इम्प्लांट अ फ्लेशी हार्ट विद इन मी, एक फ्लेशी हार्ट मेरे अंदर डालो और ये जो पत्थर दिल है मेरा निकाल दो, ऐसा एक जगह वर्णन है। थॉट रीडर, शिव बाबा कौन है, थॉट रीडर, एक भी संकल्प इधर उधर नहीं होना चाहिए, वो पढ़ रहा है सारा, हम ये नहीं सोच सकते कि उसको कुछ पता नहीं है, पग बिनु चले चले ही बिनु काना, सुने ही बिनु काना, सब पता है उसको, उसे सब पता है, वो कहता है मैं जानी जाननार नहीं हूं, वो कहता है मैं थॉट रीडर नहीं हूं, पर साकार महावाक्य है, बाप सब कुछ जानता है। साकार महावाक्य है, किसी का भी कुछ भी बाप से छिपा हुआ नहीं है। साकार मूल्यों में तो आया ये सारी बातें, पर ये भी कहा है, ही दैट प्लांटेड द ईयर शैल ही नॉट हियर, ही दैट प्लांटेड द आई शैल ही नॉट सी, बाइबल में वर्णन है। जिसने आग दी क्या वही नहीं देखेगा, जिसने कान दिया वही नहीं सुनेगा, वो सब सुन रहा है और सब देख रहा है। यू फॉर अपलिफ्टर है ना, उठाने वाला। वी फॉर वैलेंटाइन, वैलेंटाइन पता है, बिलवेड माशुक। डब्लू फॉर वॉचमैन, वो हमारा वॉचमैन है। डब्लू फॉर वेलविशर, हितेशी। एक्स मतलब क्रिसमस को एक्समास भी कहते हैं, तो एक्समास सेंटा क्लॉस, वो सेंटा क्लॉस के रूप में कभी उसे देखना। सुबह सुबह आ गया है लाल कपड़े पहनकर और क्या दे रहा है, गिफ्ट्स टॉफिया सब दे रहा है। वाई फॉर योग फेलो, योग फेलो अर्थात साथी, कंपेनियन। वाई फॉर योगाचार्य, योग का शिक्षक। और लास्ट में है जेड 108वां, झील बूस्टर, झील बूस्टर अर्थात उमंग उत्साह बढ़ाने वाला। खाली हमने ये नाम गिनाए हैं, अभी इस पर काम करना है। अभी शायद थोड़ा सा अटपटा लगा होगा कोई कोई बातें, परंतु नवीनता लानी है, रमणीकता लानी है बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करने के लिए। ऐसे ऐसे क्या ऐसे मंगल मिलन की और कुछ मिलन, कौन सा मिलन, ऐसे 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 कौन बताएगा जल्दी, ऐसे मिलन। सीजन मिलन का सार, कितना नया शब्द है सीजन मिलन, सीजन मिलन का सार जीवन में लाने वाले, क्या करने वाले, सीजन का जो मिलन है उसका सार जीवन में लाने वाले। ऐसे इशारों को समझ, क्या समझना है, वरदान समझ, विशेष इशारों को वरदान समझ, वरदानी मूर्त बनने वाले। ऐसे कौन से स्लोगन को स्मृति स्वरूप में बनना है, एक स्लोगन दिया है बाबा ने, सुनना अर्थात बनना और मिलना अर्थात भी बनना, इस स्लोगन के स्मृति स्वरूप। ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण संपन्न ब्राह्मण आत्माओं को, ऐसे संपन्न ब्राह्मण आत्माओं को, ऐसे और अनुभवी मूर्त बन, सर्व में अनुभव की विशेषता भरने वाली आत्माओं को। ऐसे और एक है, कौन बताएगा लास्ट, स्नेह का रिटर्न क्या देना है, सदा निर्विघ्न रहना, ये बनाने वाले ने निर्विघ्न रहना, ये रिटर्न देने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।